ఓం శాంతి. ఆజ్ కా విషయ హై ఖుషీ కా ఖజానా ఔర్ ఖుషీ కీ ఖురాక్. ఆప్ సభీ ఖుషీ రహనా ఖుష్ రహనా చాహతే హై? సభీ జో ఖుష్ రహనా చాహతే హై సదా వో హాత్ ఉఠాఓ. నీచే నీచే హాత్ కర దీజియే. జో సదా ఖుష్ రహతే వో హాత్ ఉఠాఓ. సదా ఖుష్ రహతే సదా. కోయి ఇన్సల్ట్ భీ కరే, కుచ్ భీ కహే, కుచ్ ప్రాబ్లమ్ హో, కోయి ప్రాబ్లమ్ నహీ. దుబారా సే ఉఠాఓ, దుబారా సే ఉఠా రే. కౌన్ కౌన్ సదా ఖుష్ రహతే సదా. కభీ భీ ఉన్కో టెన్షన్ నహీ హోతీ, కభీ భీ నహీ హోతీ, కభీ కోయి చింతా నహీ హోతీ, కభీ గుస్సా నహీ ఆతా. హాత్ ఉఠా, అభీ 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 ఉఠాఓ. ముజే పూచ్ రహా హూ ఉస్కో సబ్ తవా. చింతా హై తో మతలబ్ ఖుష్ నహీ నా? చింతా హై, టెన్షన్ హై, గుస్సా హై తో ఖుష్ నహీ నా? అభీ హాత్ ఉఠాఓ. దో తీన్ చార్ పాంచ్, ఠీక్, బహుత్ అచ్చా. చలియే ఆజ్ హమ్ ఇసీ బాత్ పర్ బాత్ కరేంగే కి సదా ఖుషీ కా ఖజానా హై ఉస్కో కైసే బనాయే. ఖుషీ క్యా హోతీ హై? ఖుష్ రహనా సభీ చాహతే హై, కి తో ఖుషీ హై క్యా చీజ్? వో ఖజానా హమ్ కైసే కైసే అప్నా బఢాయే, కైసే హమారా ఖుషీ కా ఖజానా ఇత్నా హో జాయే కి కోయి భీ ముసీబత్ ఆ జాయే ధర్తీ పర్, హమారే అందర్, హమారే పరివార్ మే, హమారే శరీర్ కే అందర్ కోయి బిమారీ ఆ జాయే, కిసీ కీ మృత్యు హో జాయే, కోయి హమారీ గిలానీ కర దే, ఇన్సల్ట్ కర దే, హై నా, పైసే కా బహుత్ బడా లాస్ హో జాయే, హై నా, ఖానే కో రోటీ భీ నా రహే, తో ఐసీ స్థితి మే క్యా హమ్ ఖుష్ రహ సక్తే హై? తో ఖుషీ కా ఖజానా క్యా హై, కైసే బఢే హమారే అందర్, ఔర్ ఖుషీ కీ ఖురాక్ క్యా హై? कि हमारे पास ऐसी क्या ऐसी खुराक हम खाते रहें कि हमारी खुशी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए और किसी और को भी हम खिला सकें वो खुराक, है ना? खाली खुद नहीं खाएं, दूसरों को भी खिला सकें ऐसी खुराक. खुशी की जहां बात आती है, कौन सी वाली खुशी? खुशी हमें बहुत साधनों से प्राप्त होती है, ना? कोई चीज, कोई कहता है मुझे ये चीज मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊं, वो चीज खाने को मिल जाए तो खुश हो जाऊं, मुझे इतना पैसा मिल जाए तो खुश हो जाऊं, राइट? मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए तो मैं खुश हो जाऊं. कौन सी वाली खुशी की हम बात कर रहे हैं? जो जिस खुशी की बाबा बात करता है, जो हम लोगों के पास रहती है, वो है अतिंद्रिय खुशी, अतिंद्रिय सुख. कहते ना अतिंद्रिय सुख पूछना हो किससे पूछें? गोप 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 गोपियों से पूछे ना, गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछे. अर्थात हम बाबा के गोप गोपी कौन? हम बाबा के बच्चे, हम ही गोप गोपियां हैं. और हमारे सिवाय आज की दुनिया में, कलयुग में कोई भी खुश नहीं है. कोई खुश है? देखो मैं तो एज ए हार्ट स्पेशलिस्ट देखता हूं, जब मेरा जो कार्य है वो हार्ट स्पेशलिस्ट का है, और कितने सालों से है ना, कितने साल हो गए मुझे, 37 साल हो गए मेडिकल प्रोफेशन में, है ना? तो मेरे पास सब तरह के लोग आते हैं, गरीब से गरीब भी आते हैं, मिडिल क्लास भी आते हैं, बहुत बहुत पैसे वाले भी आते हैं, अरबोंपति वाले भी आते हैं ना. ऐसे ऐसे जो हार्ट की बीमारी होती है, कैसे लोगों को होती है? आज तो गरीब को भी होती है, अमीर को भी होती है, किंतु अमीरों को ज्यादा पहले होती थी ना. ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी एक हजार करोड़ का टर्नओवर एक साल का है. ऐसे ऐसे लोग भी हमारे पास आते हैं ना, पेशेंट्स के रूप में ना. तो मैं पूछता हूं, क्या आप खुश हैं? नहीं डॉक्टर साहब, बात मत पूछो. मैंने कहा आप तो अमीर परिवार में जन्म हुआ, बचपन से आपको कोई दुख हुआ नहीं, आपके पास इतना पैसा है, इतने साधन है, कारें हैं, आप जिसको चाहे बुला सकते हो, जहां मर्जी जा सकते हो, विश्व के सारे देशों का आपने भ्रमण किया है, तो आप खुश क्या बात है? खुश क्यों नहीं है? कि डॉक्टर साहब बात मत पूछो मेरी, बस दुख की कहानी मेरी खुलवाओ नहीं आप, है ना, मेरे दुखियों को दुखों की कहानी मत खुलवाओ. बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार है, कहने में दुनिया के हिसाब से बहुत बड़े हैं, किंतु दुखी हैं. तो ये सुख जिसे कहें या खुशी कहें, वो क्या चीज है? एक अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा है खुशी की, हैप्पीनेस की. अभी आपको पता है ना, 3 दिन पहले 20 तारीख को जिस दिन बाबा आए, उस दिन वैसे भी वर्ल्ड हैप्पीनेस डे था, विश्व खुशी का दिवस था ना, अभी खुश ऐसे तरह लोग रहते नहीं, चलो साल में एक दिन खुशी मना ले ना, वो खुशी का दिन था 20 तारीख ना। तो वो खुशी क्या चीज है, तो लोगों ने कोशिश की है कि इसकी परिभाषा क्या दे, है ना। तो जो एक अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा है इसकी, जो सारे विश्व में मानी जाती है, वो परिभाषा क्या है, खुशी की परिभाषा बनाई लोगों ने कि इट इज, मैं इंग्लिश में पहले बोलता हूं फिर हिंदी में उसको ट्रांसलेशन करके बताऊंगा, इट इज ए इनर स्टेट ऑफ बीइंग। ये अंदर की बात है, इनर इनर माना अंदर की बात है, ये बीइंग माना आत्मा, ये आत्मा की अंदर की बात है, बाहर की बात नहीं है। इसलिए हंसना खुशी नहीं है, हंसना खुशी नहीं है, मुस्कुराना खुशी है। इट इज ए इनर स्टेट ऑफ बीइंग एंड इट कम्स फ्रॉम इनर सेटिस्फेक्शन एंड कंटेंटमेंट। ये आत्मा के अंदर की बात है, और ये कहां से आती है, जब आप संतुष्ट होते हैं तो आती है। जब आप कंटेंटमेंट मतलब संतुष्टता, सेटिस्फेक्शन, जब आप संतुष्ट सेटिस्फाई हो गए, तो अगर आप संतुष्ट हैं तो खुशी आपके अंदर आ सकती है, और ये अंदर की बात है। तो ये इसकी परिभाषा है। ये कोई हम चले गए स्विट्जरलैंड चले गए, वहां खुशी है क्या? हम शिमला चले गए, खुशी है वहां पर क्या? आप अमेरिका चले जाओ, खुशी है वहां पर? खुशी है अमेरिका में? खुशी है क्या? ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया में खुशी है क्या? कहीं खुशी नहीं है। आपने गुलाब जामुन खा लिया, गुलाब जामुन में खुशी है क्या? समोसे में खुशी है क्या? पकोड़े में खुशी है क्या? आज ये खाना खाएंगे बहुत खुश हो रहे हैं, आज वो खाना खाने को मिलेगा, वो खाना खाने में खुशी है क्या? आपको 5 लाख रुपए मिल गए, वो 5 लाख रुपए में खुशी है क्या? तो खुशी जो है वो कोई चीज नहीं है, किसी चीज में खुशी नहीं है, किसी व्यक्ति में खुशी नहीं है, किसी स्थान में खुशी नहीं है। खुशी आत्मा के अंदर की बात है, खुशी अंदर है, बाहर नहीं है। और कब आएगी? जब आप संतुष्ट होंगे तो। आज आदमी कौन सी खुशी ढूंढ रहा है? आज आदमी कहां का खुशी ढूंढता है? खाने में खुशी ढूंढता है नहीं, पैसे में खुशी ढूंढता है, स्थान में खुशी ढूंढता है, व्यक्तियों में खुशी ढूंढता है ना। उस व्यक्ति से मेरी मुलाकात हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए, है ना। इच्छाओं में खुशी ढूंढ रहा है, मेरी इच्छा पूरी हो जाए तो खुशी मिल जाए। और यही कारण है आज की बीमारियों का। जब मुझे कोई चीज खाने की आदत पड़ जाती है, मैं खाने में खुशी ढूंढता हूं, मुझे रोज शाम रोज पराठा चाहिए, मुझे रोज कुछ स्वीट डिश चाहिए खाने को, खाने के बाद हम खाने में खुशी ढूंढ रहे हैं, तो उसकी मुझे आदत पड़ गई, एडिक्शन हो गया। कोई स्मोकिंग में खुशी ढूंढ रहा है, कोई शराब में खुशी ढूंढ रहा है, इसी से हम आदत पड़ती है। देखो हमारी जितनी इंद्रियां ना, इंद्रियां कर्म इंद्रिय, आंख है देखने के लिए, पढ़ने के लिए, सुनने के लिए कान है, मुख है खाने के लिए, बोलने के लिए, हाथ पैर छूने के लिए, कर्म करने के लिए, ये जो इसे ये हमारी इंद्रियां हैं, देखने में भी खुशी मिलती है ना, वो बाहरी खुशी है। किसको टीवी देखने में खुशी मिल रही है, किसको फिल्म देखने में खुशी मिल रही है, किसी को मोबाइल देखने में खुशी मिल रही है ना, व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़ने में खुशी मिल रही है ना, कुछ पढ़ने में, किसी का किताब पढ़ने में खुशी मिलती है, किसी को कुछ सुनने में, जिसका कोई गीत सुनने में खुशी मिल रही है उसको, है ना, किसी के दोस्त की बात चल रही है उसमें खुशी मिल रही है, किसी से बातचीत करने में खुशी मिल रही है, किसी को फूल सूंघने में खुशी मिल रही है नहीं, कोई चीज कपड़ा है बहुत बढ़िया बढ़िया मुलायम मुलायम उसको छूने में खुशी मिल रही है ना। तो ये जो खुशियां हैं ये कैसी हैं? ट्रांजिटरी है। कैसी है? थोड़े समय के लिए, अल्पकाल की है। और अल्पकाल का सुख कैसा होता है? क्या कहावत है? अल्पकाल का सुख काग विष्ठा के समान है। अब लोग टीवी देख रहे हैं, आंखें दुख रही हैं, टीवी देख रहे हैं, आंखें दुख जाती, सिर दर्द हो जाता है, फिर भी देखे ही जा रहे हैं, तो खुशी मिली कि दुख मिला? क्या मिला? थोड़ा सा सुख जो शुरू शुरू का, और बाद में बहुत सारा दुख। आपको खाने में खुशी मिल रही है, आपके स्वाद की चीज है, समोसा है, गुलाब जामुन है ना, चमचम है, दही बड़ा है ना, जो आपकी फेवरेट चीज है वो आपको मिल रही है खाने को, आपने खा ली, स्वाद स्वाद में ज्यादा खा ली, फिर क्या होगा? क्या होता है फिर? क्या कहते हैं? खूब खाओ, हाजमोला से बचाओ, है ना, फिर गैस बढ़ जाती ना, सांस ऊपर आता नीचे जाता ना, बहुत मुश्किल हो जाता ना। तो ये जो खुशी है, मैं आपको एक बात बताता हूं, अल्प काल का सुख काग निष्ठा के समान। कहते हैं कोई किसी को, जैसे हम लोग पहले थे ना, जब MBBS कर रहे थे तो हम सोचते MBBS करेंगे ना, डॉक्टर बन जाएंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, है ना, तो हम सोचते MBBS हो जाएंगे तो बहुत खुशी मिलेगी, बहुत बढ़िया हो जाएगा, MBBS हो गया है ना, MBBS डॉक्टर बन गए, देखा खुशी तो मिली ही नहीं। फिर उन्होंने कहा चलो अब MD कर लेते हैं ना, MD मेडिसिन कर लेते हैं तो बड़े डॉक्टर बन जाएंगे और खुशी मिल जाएगी, तो MD मेडिसिन कर ली तो देखा तो भी खुशी नहीं मिली। फिर उन्होंने कहा चलो कार्डियोलॉजी में आगे पढ़ लेते हैं, आगे स्पेशलाइजेशन करते हैं, वो कर लिया वो भी तो भी खुशी नहीं मिली, बल्कि और ही दुखी हो गए। तो दुनिया की जैसे ना मरीचिका होती ना, मरीचिका जैसे होता ना, आपने देखा होगा गर्मियों में बहुत तेज धूप पड़ती है तो सड़क पे पानी दिखाई देता है ना आगे सड़क पे, ऐसे आप रेगिस्तान में जाओ तो क्या होता है, थोड़ा आगे जाओ तो क्या लगता है, वहां पानी है, प्यास लगी होती है वहां पे पानी, वहां जाओ तो पानी नहीं होता है। ऐसे जीवन में लगता है ये आगे खुशी है, आगे पानी है, यहां पानी, हमारी प्यास बुझ जाएगी। मैं आपके इसके बारे में आपको अनुभव सुनाता हूं, मैं छोटा सा अनुभव है, अल्प काल का सुख, दुनिया के जितने सुख हैं, शादी कर लेते हैं तो शादी का सुख, शादी करेंगे ना बहुत खुशी मिलेगी, कोई हमारे साथ होगा, कोई हमारी बीवी होगी या हमारा पति होगा, हमें पूछेगा है ना, हमारा केयर करेगा, हमें घुमा के लाएगा या घुमा हमें ये बना के खिलाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, आप सभी अनुभवी है ना, खुशी मिली ना शादी के बाद, खुशी मिली कि नहीं मिली, है ना, नहीं मिली, बहुत खुशी मिली ना, है ना, नहीं मिली, मिली ना, है ना। अच्छा फिर क्या बच्चे हो जाएंगे, बच्चे बहुत खुशी हो जाएगी, बहुत खुशी हो जाएगी, बच्चे हुए नहीं हुए, खुशी मिली ना बच्चे होने से, नहीं मिली, है ना। तो अल्प काल का सुख काग निष्ठा के समान। मैं बताता हूं, जो मैंने MBBS किया ना, मैं दिल्ली से किया, मैंने MBBS मुल्ला आजाद मेडिकल कॉलेज से। तो जब हम इंटर्नशिप कर रहे थे, हॉस्टल में रहते थे हम, वहां पर ना हॉस्पिटल में रहते थे, तो हम लोग सुबह सुबह जल्दी उठते थे, 4 बजे उठते थे, आदत थी बचपन से ही उठने की, और फिर हम लोग नहा धो के तैयार होके हम लोग वॉकिंग करने जाते थे, पीछे राजघाट है ना, पीछे वहां मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के पीछे पल्ली तरफ जाओ ना, पिंक रोड के पल्ली तरफ राजघाट है, तो वहीं से हमें दरियागंज से निकलना होता था हमको बीच में, वहां पर एक जगह थी जहां पर दाना डालते थे, दाना समझते हैं, दाना चिड़िया को, कबूतर वगैरह वहां आते थे बहुत सारे, तो लोग दरियागंज के लोग आके वहां पर दाना, गेहूं, बाजरा या और कोई दाना डाल के जाते थे, तो हम लोग रोज वहीं से सुबह सुबह निकलते थे। एक दिन मैंने देखा कि वहां पर ना कुछ मजार पड़े ना, जब बाजरा पड़ा हुआ था, कुछ गेहूं के दाने पड़े हुए थे, एक दिन मैंने देखा यहाँ कुछ मोती पड़े हुए, तो मैंने कहा मोती कहां से आए, उसने थोड़ा ध्यान से देखा, पड़े तो शायद पहले भी होते होंगे, मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो मैंने कुछ मोती पड़े हुए, तो मैंने देखा एक कौआ था, कौआ जो है उस कौए ने जिसने ऐसे किया तो उसके मुंह से वो एक मोती जैसा निकला, तो मैंने कौए के मुंह से मोती कैसे निकला, तो वो ऐसे और भी कई पड़े हुए थे, तो मैंने कहा मोती ही पड़े हुए हैं, तो मैंने कहा पता नहीं, मैंने कहा मैं इसको छू उठा लेता, एक मोती उठा के देखता हूं, बहुत चमक रहा था, सूर्य अभी भी निकला हुआ था, चमक रहा था बहुत, 5-6-10 तो होंगे कम से कम, तो मैं सोचा मैं कैसे उसको उठाऊं, मैंने कहा पता नहीं क्या पड़ा हो, कभी कौए के मुंह का अपने मुंह से निकाला, पता नहीं क्या चीज हो, देखने में तो मोती लग रहा है पता नहीं पर क्या चीज हो ना, तो मैं सोचा ये हाथ से करूं, नहीं मैंने कहा नहीं ये वाला उल्टा हाथ होता ना, इसकी छोटी उंगली, ये वाली ये छोटी उंगली ना, मैंने कहा बेकार उंगली है इसको, चलो हम लोग इससे छू के देखते हैं, इससे ऐसे टच करके देखता हूं पहले, तो टच किया तो मैंने देखा वो तो एक्चुअली कौवे की उल्टी थी, कौआ होता ना कौवे की उल्टी थी, वो ऐसे कौवे की उल्टी थी, तो कौवे ने मुंह से निकाली थी वो ना, कौवे की मैंने उंगली लगाई तो मैंने ऐसे किया तो मैंने हाथ वो तो ऐसे फिस गई, और ऐसे कि मैंने हाथ को ऐसे पास ऐसे किया ना ऐसे, अब इतनी लाया था, बदबू बहुत थी उसके अंदर, बहुत बदबू थी, तो मैंने ऐसे ऐसे किया, मैंने हाथ तभी जमीन पे पूछ भी दिया ना ऐसे करके, और फिर मैं अभी मेरे को इतनी इसमें बदबू आ रही थी उंगली में कि मैं तुरंत वापस अपने हॉस्टल में गया। मैंने हाथ धोया, फिर धोया, आधा घंटा मैं हाथ धोता रहा और वो बदबू खत्म ही नहीं हो, है ना। फिर मैंने और धोया, और रगड़ करके धोया, है ना, मैंने कैसे भी करके उंगली निकल जाए, मतलब ये बदबू निकल जाए। तो वो आज से कम 36 साल पहले की बात है ना, 36 साल पहले, और ये उंगली मतलब जो है ना आज भी मुझे इस बदबू आती है इसमें, मतलब इस उंगली को काट तो नहीं सकता मैं, किंतु मतलब ये आज भी मुझे उंगली खराब लगती है। मतलब ये मैंने अलग उस मोती के पीछे मेरी बुद्धि गई, उस मोती को मैंने छूने की कोशिश की और उसका क्या हुआ रिजल्ट मेरी उंगली में, मतलब आज भी बदबू लगती है इसके अंदर ना। तो ऐसे ही हमारा मतलब वो ऐसी इतनी बदबू थी उसके अंदर कि उस आकर्षण के पीछे है ना, एक आकर्षण हुआ मन में पैदा, ये मोती है। ऐसे ही हम समझते हैं शादी हो जाए ना, शादी हो बहुत सुख मिलेगा, शादी हुए 35 साल हो गए, 40 साल हो गए, है ना, सुख मिल रहा है ना, है ना, नहीं मिलता, नहीं मिलता। ऐसे हम कुछ भी करते हैं, इच्छाओं के पीछे हम भागते हैं, इच्छाओं के पीछे भागते हैं, ये अल्पकाल का सुख है ना, आकर्षण का सुख है, वो आकर्षण पैदा होता है, लगता है सुख मिलेगा, पर बहुत सारा दुख समाया पीछे है ना। आज भी उंगली में कभी नाक के पास लेके नहीं आता ये उंगली, है ना, आज भी कोई कहना मेरे को नाक के पास ले जाओ तो मैं लेके नहीं जाऊंगा, आज भी इसमें बदबू, वैसे कहने तो बदबू नहीं है, आप सुन के देखो तो बदबू नहीं है, तो मेरे को आज भी बदबू आएगी। तो जो हमसे जिस चीज में हम आकर्षण में फंस जाते हैं वो हमारे जीवन के लिए जंजाल बन जाता है ना, छोड़ भी नहीं सकता, इससे उंगली को काट भी नहीं सकता, रख भी नहीं सकता, है ना। ऐसे हम जो संबंधों में फंसे हुए हैं उन संबंधों को छोड़ भी नहीं सकते, रख भी नहीं सकते, नहीं, ऐसी हालत हो जाती है। तो ये जो सुख है वो जो बाबा कहता है वो कौन सा सुख है, वो खुशी का खजाना कैसे है, कैसे बने वो खुशी का खजाना मेरे पास, कहां से आए वो, किसी के पास नहीं है वो, कैसे मेरे जीवन में आए। अब खुशी का खजाना कब आएगा, मैंने पहले बताया, थोड़ा इशारा दिया है उसमें परिभाषा में, खुशी, खुशी माना अंदर की, अंदर से आती है, और जब आप संतुष्ट होते हैं, संतुष्ट माना आपके पास संतोष है, माना आपके पास कोई इच्छा नहीं है, कोई भी इच्छा है अगर तो आप खुश नहीं है, कोई भी अगर आपके अंदर एक भी इच्छा है तो खुश नहीं है। ऐसी स्थिति हो सकती है आपके अंदर कोई इच्छा ना हो, हो सकता है, हाँ? हो सकता है। तो हमारी ऐसी स्थिति कैसे आ सकती है कि हम खुश, हम हमेशा खुश रहे या हमारी कोई इच्छा नहीं, इच्छा ही ना रहे, कोई भी इच्छा ना हो, हम संतुष्ट, एकदम संतुष्ट, ऐसी हमारी स्थिति आ सकती है क्या? तो ऐसी स्थिति कैसे आएगी हमारी, इसी बात पर हम थोड़ा गहराई से चलते हैं। वो खुशी का खजाना हमारे पास बढ़ जाए, कई बार हम योग करते हैं ना, जैसे बाबा, कई लोग हमारे भाई बहन भी योग करते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं, परमात्मा सुख का सागर है, बाबा से सुख, सुख मेरे अंदर आ रहा है, मुझे आत्मा में आ रहा है, सुख आ रहा है, सुख आ रहा है, सुख आ रहा है, सुख, एक घंटा ऐसे सुख, सुख आ रहा है, सुख आ रहा है, बैठे रहो, सुख आया, परमात्मा सुख का सागर है तो सुख मेरे अंदर आया, एक घंटा योग करके बाहर जाओ देखो सुख खत्म हो जाएगा, तुरंत खत्म हो जाएगा, होगा उसमें तो फील हो, भले सुख महसूस हो किंतु बाद में खत्म, तो एक घंटे से आ रहा था, कहां गया, कहां गया सुख, वो खुशी अंदर ऊपर से आ रही थी, कहां गई खुशी, क्या चीज है ना, वो कैसे बढ़ाएं अपनी खुशी को हम। तो ये जो है आपने सुना अभी, कल भी मुरली में था, आज भी था, परसों भी था, ये जो बाबा की मुरली है ना, बाबा का जो मुरली है, बाबा की पढ़ाई, मुरली पढ़ाई मतलब पढ़ाई, जो बाबा की पढ़ाई है, ये ईश्वरीय पढ़ाई है, ये ज्ञान रतन है, इनको अगर हम ध्यान से जीवन में धारण करें, पढ़ाई ध्यान से पढ़ें, तो क्या होगा हमारे जीवन में, क्या होगा, क्या होगा, पढ़ाई ध्यान से पढ़ेंगे तो बाबा कहते हैं अपार खुशी में रहेंगे। ये बताइए कि कैसे रहेंगे, अब ज्ञान रत्नों को धारण किया तो अपार खुशी कैसे आ जाएगी। अब इस बात में चलते कैसे ज्ञान रत्नों से हमारे जीवन में अपार खुशी आएगी, मतलब अतिंद्रिय सुख की अनुभूति होगी। ज्ञान क्या है? ज्ञान माना सत्यता की समझ। ज्ञान क्या चीज है? ट्रुथ है ना, सत्यता की समझ। और राजयोग मेडिटेशन क्या है? राजयोग मेडिटेशन को इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में अगर इंग्लिश में मैं कहूं तो बीइंग द ट्रुथ, सत्य बनना ही राजयोग मेडिटेशन है। लिविंग द ट्रुथ, सत्य को जीना ही राजयोग मेडिटेशन है। और रियलाइजिंग द ट्रुथ, सत्य को अनुभव करते रहना ही राजयोग मेडिटेशन है। और ज्ञान क्या है? सत्य की समझ। ज्ञान माना सत्य, परमात्मा सत्य है और उसका ज्ञान सत्य है, वो जो सुनाता है वो सत्य है। सत्य किसे कहते हैं? अब चलो सत्य पे चलते हैं, मतलब सत्य से खुशी आती है, सत्य किसे कहते हैं? ट्रुथ किसे कहते हैं? सत्य क्या है? सत्य माना सत्य की दो, सत्य में दो बातें हैं, एक तो सत्य अविनाशी है, सत्य कभी मरता नहीं है। सत्य क्या होता है? सत्य ना कभी पैदा होता है ना कभी मरता है, ठीक है। दूसरी बात, सत्य कभी बदलता नहीं। मेरे अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो सत्य है? इस परिभाषा को देख के चलो तो शरीर कैसा है? सत्य है शरीर, ये तो मरता है, नहीं मरता है, एक दिन पैदा हुआ था एक दिन मर जाएगा, तो सत्य तो नहीं है, झूठ है, ठीक है। बदल भी रहा है और पैदा भी हुआ मर भी जाएगा। और मैं डॉक्टर हूं, ये सत्य है? डॉक्टर में पैदा हुआ डॉक्टर था? नहीं था। हमेशा डॉक्टर रहूंगा? नहीं, है ना। ये तो डॉक्टर में हॉस्पिटल में घर में डॉक्टर हूं क्या? या जो भी मैं कहूं कि मैं पिता हूं, मैं पति हूं, मैं भाई हूं, मैं बेटा हूं, ये भी क्या है? सत्य है, ये भी रोल है। अभी यहां है, नहीं वहां नहीं है, बदल गया ना, थोड़ी देर में बदल गया, ये भी सत्य नहीं है। मैं कहूं मैं करोड़पति हूं, सत्य है? अभी तो मेरे पास जेब में एक पैसा भी नहीं है, कहां करोड़पति हूं, ये भी सत्य नहीं है, है ना। तो ये जो है ये सत्य, सत्य क्या है? सत्य जो कभी बदलता नहीं। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा शरीर में आने से पहले भी थी, एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु थी, और शरीर छोड़ने के बाद भी रहूंगी, अभी भी ऐसी हूं, अभी भी बिंदु हूं, पहले भी बिंदु थी, शरीर में जाने के बाद भी बिंदु रहूंगी। जब मैं 2 महीने का था तो भी छोटी सी बिंदु थी, अभी मैं 58-59 साल का हूं तो भी इतना ही हूं, और जब 70 साल का होऊंगा तो भी इतना ही रहूंगा। नहीं, ये भी बड़ा हो जाएगा, आत्मा बड़ी हो जाएगी, पहले इतनी सी थी फिर इतनी बड़ी हो गई फिर इतनी बड़ी, ऐसी होगी क्या? नहीं। तो क्या सत्य है? मैं स्थूल देह नहीं, स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य मन जागती ज्योत, चैतन्य मन जागती ज्योत, मैं अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा हूं। दोनों भृक्टी, ये इसको भृक्टी बोलते हैं, इनको ना, इनको भृक्टी बोलते हैं, दोनों भृक्टियों के मध्य और दोनों ब्रेन, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन, इन दोनों का कंट्रोल रूम है हाइपोथैलेमस। यहां से 2.5 इंच अंदर, यहां से 3 इंच नीचे, इसके नीचे नहीं, इसके बिल्कुल स्किन के नीचे नहीं, अंदर 2.5 इंच अंदर, 3 इंच नीचे यहां से, उसके जहां दोनों लाइन मिलती है ना वहां पर मैं स्थित हूं, हाइपोथैलेमस के मध्य में स्थित हूं। ये इस सत्य को जियो, इस सत्य, ये सत्य बनो कि मैं आत्मा हूं। चलते फिरते अपने आप से बात करो, मैं स्थूल देह नहीं, स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, दोनों भृक्ट के मध्य, दोनों ब्रेन के कंट्रोल रूम हाइपोथैलेमस के मध्य में बैठी हूं मैं, मुझ अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा से 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं। कौन सी ऊर्जाएं? 7। कौन सी? पहली कौन सी? ज्ञान। ज्ञान माना सत्य की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ, सत्य ज्ञान, पवित्रता, दूसरी एनर्जी पवित्रता, तीसरी एनर्जी शांति, चौथी एनर्जी रूहानी प्रेम, पांचवी एनर्जी अतीन्द्रिय सुख, छठी एनर्जी आनंद, सातवीं एनर्जी शक्तियां। ये सातों एनर्जी मेरे मस्तिष्क की 100 अरब कोशिकाओं को, शरीर की पांचों कर्मेंद्रियां, आंख, नाक, कान, मुख, त्वचा, बाहरी त्वचा, ये शरीर की बाहरी त्वचा, अंदरूनी त्वचा भी है, मुंह में भी त्वचा है ना, सांस की नाली में भी त्वचा है, अंदर की त्वचा है, पेट के अंदर भी त्वचा है, पेट की नाली के अंदर भी त्वचा है, किडनी के अंदर भी, पेशाब की नाली के अंदर भी त्वचा है, हमारी की जो हार्ट की आर्टरीज हैं, सारी बॉडी में नसें नसें हैं, आर्टरीज और वेन्स हैं, उनके अंदर भी त्वचा है ना, और शरीर में 80,000 अरब कोशिकाएं हैं, उन सभी को हम इन सात एनर्जी से पोषित कर रहे हैं। तो चलते फिरते ये महसूस करते रहो कि मैं आत्मा शरीर को चला रही हूं, हार्ट को चला रही हूं, फेफड़ों को चला रही हूं, फेफड़ों से सांस ले रही हूं, पेट में खाना पच रहा है, मैं आत्मा चल रही हूं, कानों से सुन रही हूं, मुख से बोल रही हूं, ये अवेयरनेस, चलते फिरते ये अवेयरनेस, मैं आत्मा कर रही हूं, मैं आत्मा कर रही हूं, मैं आत्मा ऊर्जा हूं, देखने की चीज नहीं हूं, ये शरीर पांच तत्वों का बना है, कि तुम मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा चल रही हूं। जैसी अपने बीमारी शब्द कहां से आया, बीमाना डर, मारी माना बने रहना, अगर डर बना हुआ है तो आप बीमार हो, और जैसी अपने को आत्मा समझा तो क्या हुआ, डर का क्या हुआ, देखो चार डर सबको है, चार डर सबको है, कौन कौन सा, मरने का डर सबको है, ठीक है, दूसरा डर बीमारी का डर सबको है, बुढ़ापे का डर सबको है, चौथा गरीबी का डर सबको है, अमीर से अमीर आदमी को भी गरीबी का डर होता है, बिजनेस में लॉस नहीं हो जाए, मेरा ये नहीं हो जाए, मेरे शेयर में ऐसा नहीं हो जाए, वैसा नहीं हो जाए, मेरा पैसा खराब नहीं हो जाए, है ना, सबको डर लगता है, ये चार डर सबको है, जैसे ही अपने को आत्मा समझा क्या हुआ, डर खत्म हो गए नहीं, तो ये जैसे डर खत्म हुआ ना, ये सत्य समझना, अपने सत्य को समझना, सत्य को अनुभव करना, यही राजयोग मेडिटेशन है, और ये हमने अनुभव किया कि मैं मर नहीं सकता, चिंता खत्म हो गई, इच्छा खत्म हो गई, संतुष्टता आ गई, और देखो आगे देखो, और ज्ञान क्या है, और क्या ज्ञान है, फिर क्या समझ आया, सत्य की समझ ना, सत्य एक तो सत्य की आत्मा है, दूसरा सत्य क्या समझ आया, मैं अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा परम धाम निवासी, अति सूक्ष्म परम चैतन्य ना, परम चैतन्य, हम चैतन्य है और शिव बाबा क्या है, परम चैतन्य में ना सदा जागती ज्योत, हमारी लाइट कम ज्यादा होती है, हमारी लाइट कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, और शिव बाबा की लाइट कैसी है, सदा एक जैसी, सदा जागती ज्योत है, हम कभी सत्व प्रधान थे, सातों लाइन एनर्जी भरपूर थे, सत्व माना सात, प्रधान माना भरपूर, सातों एनर्जी से भरपूर थे, और अभी क्या हो गए, तमो प्रधान माना सातों एनर्जी अंधेरा, तमो माना अंधेरा, सातों एनर्जी ना के बराबर है, रजो माना आदि शाम हो गई, रजो माना शाम आदि हो गई एनर्जी, सातों एनर्जी, तो रजो बने फिर तमो बन गए, शिव बाबा कभी ऐसे बनता है क्या, सतो कभी रजो कभी तमो ऐसे बनता है क्या, शिव बाबा सदा ही सागर है सातों एनर्जी का, तो वो सदा जागती ज्योत है ना, परम चैतन्य परम ज्योति, जो ज्योति कभी कम ज्यादा ना हो, परम पिता सर्व आत्माओं का पिता, परम आत्मा सब आत्मा में सुप्रीम, शिव बाबा के संतान, और मेरे शिव, मेरे मीठे शिव बाबा क्या कर रहे हैं, ब्रह्मा बाबा के द्वारा मुझे सर्व संबंधों की पालना और प्यार दे रहे हैं ना, सर्व संबंधों की पालना और प्यार दे रहे हैं, अब मुख्य 9 संबंध है बाबा के साथ मेरे, कौन कौन से, पहला संबंध मां का है, शिव बाबा ही मेरी मां है, पर ब्रह्मा के द्वारा मुझे मां की पालना और प्यार देते हैं, ठीक है, ब्रह्मा हमारी मां है, शिव बाबा हमारी मां है, अभी एक हफ्ते से 10 दिन पहले मुरली थी, बाबा ने कहा शिव बाबा ही हमारी मां है, पर शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा मुझे मां की पालना और प्यार देते हैं, शिव बाबा ही मेरा बाप भी है, कि तू बाप कैसे दे रहा प्यार, ब्रह्मा बाप के द्वारा मुझे बाप का प्यार देता है। शिव बाबा जो कुछ भी मुझे देता है किसके द्वारा देता है? ब्रह्मा के द्वारा, राइट। मां का प्यार भी, बाप का प्यार भी। टीचर किसके द्वारा पढ़ाता है? शिव बाबा टीचर है, किसके द्वारा पढ़ा रहा है? ब्रह्मा बाबा के द्वारा पढ़ाता है। शिव बाबा मेरा सतगुरु है, किसके द्वारा सतगुरु है? शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा मुझे सतगुरु की पालना देगा। शिव बाबा मेरा बड़ा भाई बंधु है, बंधु है ना बड़ा भाई, किसके द्वारा है? ब्रह्मा बाबा के द्वारा है। किसके द्वारा? ब्रह्मा बाबा के द्वारा पालना दे रहा है। शिव बाबा मेरा दोस्त है, सखा है, किसके द्वारा? किसके द्वारा? ब्रह्मा बाबा के द्वारा। शिव बाबा मेरा साजन है ना, मेरा मोस्ट बिलेवेड है, किसके द्वारा है? ब्रह्मा बाबा। ये बात गहराई समझने की है ना, हम ऐसे ही बोल देते हैं ना, पर समझते नहीं ना। शिव बाबा मेरा सर्जन है, डॉक्टर है, किसके द्वारा है? किसके द्वारा है? बिंदु करेगा मेरा? बिंदु अगर शिव बाबा यहां पे आ जाए मेरा इलाज करेगा? नहीं, ब्रह्मा बाबा के द्वारा है। शिव बाबा मेरा बच्चा है, किसके द्वारा है? ब्रह्मा बाबा के द्वारा, राइट। तो मुख्य 9 संबंधों का अनुभव होना चाहिए। तो ये इन संबंधों के द्वारा खुशी मिलेगी ना हमें? नहीं मिलेगी। मुझे पहले पता लगा मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं, खुशी मिली, संतुष्ट हो गए, मरने की बात खत्म, डरने की बात खत्म। फिर शिव बाबा मेरा बाप है, मैं उसकी संतान हूं। फिर पता लगा ये सारे संबंध मेरे उसके साथ हैं, ये भी समझ में आ गया। मां के द्वारा क्या करता है शिव बाबा? मां के द्वारा शिव बाबा क्या करता है? मुझे एक दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट दे देता है, दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट गिफ्ट में दे देता है। जैसे ही ब्राह्मण जन्म मिला ना मुझे, पहले जैसे जैसे ही बाबा क्या करता है, मुझे मनुष्य से ब्राह्मण बनाता है। मनुष्य माना मन के वश में, पहले मैं मन के वश में था। मन में क्या भरा हुआ था? मन में क्या भरा हुआ था बोलो, मन में क्या भरा हुआ था? जो कर्मेंद्रियों से जो किया था, आंखों से जो देखा था, मन में भरा हुआ था, है ना। जो पढ़ा था, जो आंखों से देखा था, वो मन में रिकॉर्ड था ना। जो भी देखा, कर्म किसे कहते हैं? जो भी इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करते हैं उसे कर्म कहते हैं। देखना भी कर्म है, पढ़ना भी कर्म है, सुनना भी कर्म है, सूंघना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, खाना भी कर्म है, हाथ पैर से कर्म करना वो भी कर्म है। तो हमने जो देखा वो भी रिकॉर्ड था मन में, हमने जो सुना, हमने जो पढ़ा वो भी रिकॉर्ड है, जो सुना वो भी रिकॉर्ड है, जो सूंघा वो भी रिकॉर्ड है, और जो खाया वो भी रिकॉर्ड, जो बोला वो भी रिकॉर्ड है, जो छुआ वो भी रिकॉर्ड है। वो मन में भरा हुआ था। तो ये हमने जो अंदर भरा हुआ ना, जो मन में, तो ये हमारे अंदर मन में भरा हुआ है ना। तो मन के वश में, मन के वश में माना मनुष्य क्या है? जो देखा था उसकी बार बार याद आती है, नहीं आती है, उसी में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसे बोलते हैं इंद्रियों का सुख। जो पढ़ा था, देखो आपने कोई कहानी पढ़ी थी पहले, वो कहानी याद आती नहीं आती? कोई चीज टीवी में सीरियल देखा था, कोई फिल्म देखी थी, वो किसी की बात देखी मुझे अपनी बात, वो वाली बात याद आ जाती है ना, आती नहीं आती? सुना था वो बात, वो याद आ जाती है। तो वही देह की बातें भरी हुई हैं। क्या देखा हमने आंखों से? क्या देखा? देह देखी अपनी, दूसरों की देह देखी, देह के संबंध देखे, देह के संपर्क देखे, देह के पदार्थ देखे, वही तो अंदर रिकॉर्ड है। तो मनुष्य माना मन के वश में। बाबा ने क्या बना दिया? ब्राह्मण। ब्राह्मण माना ब्रह्म माना बेहद, जिसकी मन और बुद्धि बेहद में हो। अभी क्या हो गया? मैं क्या बन गया? ब्राह्मण। ब्राह्मण माना अब मेरी बुद्धि बेहद। बेहद माना क्या? आत्मा बेहद है, परमात्मा बेहद है, आत्मा परमात्मा के संबंध बेहद है, और क्या बेहद है? ये सृष्टि रूपी ड्रामा बेहद है। तो ब्राह्मण वो जो जिसकी बुद्धि में सिर्फ 4 ही बातें रहे, आत्मा, बाबा, आत्मा परमात्मा के संबंध और ड्रामा, मतलब ABCD है ना। ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा, सी फॉर कनेक्शन और डी फॉर ड्रामा। तो ब्राह्मण का मतलब यह है जिसकी बुद्धि में सदा क्या रहे, मन में क्या रहे? ABCD रहे, अर्थात ये ज्ञान रहे। अब मैं बन गया ब्राह्मण, मुझे ब्राह्मण बनाया। अब बाबा ने क्या दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट दे दी। दिव्य बुद्धि माना दैविक गुणों पर आधारित बुद्धि दे दी, सत्यता पर आधारित बुद्धि दे दी, ईमानदारी पर आधारित बुद्धि दे दी, मीठा बोल मधुरता के ऊपर आधारित बुद्धि दे दी, अंतर्मुखी अंदर देखने वाली बुद्धि दे दी, बाहर देखने वाली नहीं अंदर देखने वाली बुद्धि दे दी, एकाग्रता वाली बुद्धि दे दी, संतुष्टता वाली बुद्धि दे दी, है ना। वो दिव्य बुद्धि दी, उसमें बैठ जाओ, आत्मा उसमें बैठ गई। अब आत्मा उसमें बैठी और साथ में पवित्र बुद्धि और पवित्र मन, तो बाबा या इधर दिव्य बुद्धि रूपी लुट क्या करती है हमको, जन्म की गिफ्ट है हमारी, ब्रह्मा बाबा देता है, शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा देते हैं, और ये गिफ्ट हमको एक सेकंड में सूक्ष्म वतन में बैठे बाबा के पास पहुंचा देती है, बाप दादा की गोद में पहुंचा देती है। सूक्ष्म वतन क्या है, सूक्ष्म वतन कुछ और नहीं है, शिव बाबा का दिल है, शिव बाबा का दिल तख्त है, जैसे ब्रह्मा बाबा वहां बैठा है, दिल ब्रह्मा बाबा कहां बैठा है बताओ, कहां बैठा है ब्रह्मा बाबा, सूक्ष्म वतन में बैठा है, कहां बैठा है सूक्ष्म वतन में बैठा है। तो सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म वतन किसे कहते हैं, सूक्ष्म माना पवित्र शुद्ध, तो सूक्ष्म शरीर क्या चीज है, एक स्थूल शरीर पांच तत्वों का बना है, सूक्ष्म शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर कुछ और नहीं है, जो आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं ये ही सूक्ष्म शरीर है, ठीक है। मन बुद्धि और संस्कार, मन बुद्धि संस्कार ही सूक्ष्म शरीर है, उसकी शेप कैसी होती है सूक्ष्म शरीर की, जैसे स्थूल शरीर की शेप है ऐसे ही सूक्ष्म शरीर की शेप है, बिल्कुल ऐसे कैसे, जैसे एक सूखा ब्रेड ले लो और एक प्लेट में दूध ले लो, वो ब्रेड पीस को दूध प्लेट में रख दो तो दूध कहां जाएगा, ब्रेड में चला, दूध नजर नहीं आ रहा कहां गया, अब दूध की शेप क्या है, दूध की शेप क्या है, जो ब्रेड की शेप है, ऐसे ही सूक्ष्म शरीर है ना हमारा मन और बुद्धि, तो पवित्र बुद्धि पवित्र मन ही हमारा सूक्ष्म शरीर है, ठीक है। तो जब मैं आत्मा पवित्र बुद्धि और पवित्र सूक्ष्म शरीर माना पवित्र बुद्धि और पवित्र मन के साथ होती हूं, तो मैं आत्मा कहां पहुंच जाती हूं, शिव बाबा के दिल में पहुंच जाती हूं, शिव बाबा का दिल ही सूक्ष्म वतन है, शिव बाबा के दिल में ब्रह्मा बाबा बैठा हुआ है, वो फरिश्ता बन गया ना, फरिश्ता जो बाबा ने मुंह ली थी ना परसों, फरिश्ता, फरिश्ता माना, फरिश्ता माना जिसकी बुद्धि संपूर्ण सतो प्रधान बन गई है, संपूर्ण पावन सतो प्रधान बुद्धि बन गई, संपूर्ण पावन सतो प्रधान मन बन गया, संपूर्ण पावन सतो प्रधान संस्कार बन गए। तो ब्रह्मा बाबा ने 33 साल पुरुषार्थ करके अपनी बुद्धि को मन को संस्कारों को संपूर्ण पावन सतो प्रधान बनाया, और कहां जाके बैठ गए, कहां जाके बैठ गए, शिव बाबा के दिल में जाके बैठ गए, है ना। तो शिव बाबा के दिल में कौन बैठा है, ब्रह्मा बाबा, राइट। और ब्रह्मा बाबा के दिल में कौन बैठा है, कौन बैठा है, क्योंकि बाबा के दिल सच्ची साफ है तो उसके दिल में कौन बैठा है, शिव बाबा। बाबा क्या कहता है, मेरे बाबा के दिल में कौन, बच्चे, और बच्चों के दिल में कौन, बाबा। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो है वो कौन है, इस समय कौन है, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो सदा है, ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा सदा शिव बाबा के दिल में है, और शिव बाबा सदा ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के दिल में सदा शिव बाबा। तो ये मैं आपसे बात कर रहा था खुशी का खजाना जमा करने के लिए क्या करें, तो ये एक अनुभव, जैसे ना बाबा अपना बुद्धि को उस लिफ्ट में बैठो, अपने को ब्राह्मण पहले देखो, मैं ब्राह्मण हूं, मनुष्य मन के वश में तो नहीं हूं, मन माना मन के वश में क्या क्या चीज है, हद की हद, मनुष्य माना जिसकी बुद्धि, जिसका मन और बुद्धि बेहद हद में है, हद माना देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थों में जिसकी बुद्धि रहती है, मन रहता है, वो मनुष्य है। और जैसे ही मैं ब्राह्मण बनता हूं तो क्या है, बेहद, बेहद माना मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, मेरे सर्व संबंध उसके साथ एक संबंध को अनुभव करो, और डी फॉर ड्रामा। तो पहला संबंध है मां का संबंध, है ना। तो वो कहां पहुंचा देती है ये लिफ्ट, लिफ्ट में बैठो, कहां पहुंच गए, सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में पहुंचाती है सीधा, कहां पहुंचाती है लिफ्ट, सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में पहुंचा देती है, सूक्ष्म वतन में बाबा बैठा है, बाबा क्या करे, आओ बच्चे आओ मेरी गोद में आ जाओ। कभी बाबा के पास जाके लाइन देखी है आपने, वहां पर जाके 20 लोग आगे खड़े हैं आपके, बाबा सबको ऐसे नंबर वाइज प्यार करता है क्या, कैसे करता है, जो सूक्ष्म वतन में बाबा से अनुभव करते हैं हाथ उठाओ, शर्माना नहीं है ना, चल नीचे करो। तो शिव बाबा जब भी जाते हैं, जब जो जो बाबा के पास सच्चा योग लगाते हैं, सच्चे बच्चे हैं बाबा के पास जाते हैं, सच्चे ब्राह्मण बच्चे बाबा के पास रोज जाते हैं अमृत वेले, है ना। और बाबा देखो वेट कर रहा होता, आओ बच्चे आओ मेरी गोद में समा जाओ, ऐसा लगता है बाबा बाबा ने मुझे गोद में समा लिया है ना। तो लिफ्ट सीधी बाबा की गोद में उतारती है, दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट है ना। और ऐसा फील होता है मैं बाबा की गोद में हूं शरीर के साथ। ये बॉडी लाइट की होती है, वो ये बॉडी शरीर पांच तत्वों की है, वो सूक्ष्म शरीर कैसा होता है, पवित्र बुद्धि पवित्र मन से बना हुआ शरीर होता है, ऐसा ही होता है। और बाबा की गोद में चले जाते हैं, फिर बाबा बहुत प्यार से सिर पे हाथ रखता है ना, प्यार से पूछता है बच्चे कैसे हो बच्चे, है ना। तो ये जो है मां के रूप में बाबा ये हमें गिफ्ट देता है। अब खुशी आई नहीं आई, तो ऐसे बाबा की गोद में गए ना खुशी आई ना, तो मां का प्यार बाप के रूप में क्या देता है बाबा शिव बाबा। अब बाबा क्या करता है, मां के रूप में बाबा क्या कहता है, देखो ये तुम्हारा बाप है, देखो शिव बाबा बैठा ना ब्रह्मा की यहां पे बैठा ना, देखो ये तुम्हारा बाप है, शिव बाबा तुम्हारा बाप है, सातों गुणों का सागर है, देखो मैं हूं ना ब्रह्मा, मैं मेरे शरीर में बैठा है, मेरे सूक्ष्म शरीर में बाबा बैठा, शिव बाबा बैठा, तो ये तुम्हारा बाप है। अब बाप क्या करता है, शिव बाबा बाप के रूप में मुझे क्या देता है, मुझे त्रिनेत्री बना देता है, क्या देता है, बाप के रूप में त्रिनेत्री बनाता है, त्रिनेत्री माना ज्ञान का तीसरा नेत्र दे देता है, ज्ञान माना सत्य की समझ। अब मुझे समझ का नेत्र दे दिया कि बच्चे तुम देह नहीं, तुम देह नहीं हो, तुम ये आत्मा हो और ये तुम्हारा सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर क्या है, पवित्र बुद्धि पवित्र मन, ये सूक्ष्म वतन क्या है, ये बाबा की दिल है। ब्रह्मा बाबा कौन है, ब्रह्मा बाबा है कौन, संपूर्ण पावन सत्व प्रधान बुद्धि, संपूर्ण पावन सत्व प्रधान मन और संपूर्ण पावन सत्व प्रधान संस्कार, ये ब्रह्मा बाबा है ना। बाबा समझ दे रहा है मेरे से तुम्हारे सारे संबंध है, तुम्हारा मां भी हूं, तुम्हारा बाप हूं, तुम्हारा टीचर हूं। टीचर क्या हुआ, टीचर क्या है? टीचर के रूप में क्या देता है, मुझे त्रिकालदर्शी बना देता है, तीनों कालों का ज्ञान दे दिया, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे दिया, नेता क्या बना दिया, मुझे स्वदर्शन चक्रधारी बना दिया कि तुम बच्चे सत्य, तुम ऊपर थे ना मेरे पास था ना जब परमधाम में, तुम ऐसे चमकते सितारे थे, सत्व प्रधान थे, पावन सत्व प्रधान थे, फिर तुम देवी देवता बने, आगे आए ना सत्युग में आए तो देवी देवता थे, तुम्हारा ऐसा सा तुम्हारा चित्र था, तुम्हारा ऐसा शरीर था, तुम्हारा इतना बड़ा मुकुट था, तुम्हारे सोने के महल थे ना, तुम ऐसे ऐसे थे, सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म थे, है ना। दिखा दिया बाबा ने, देखो तुम यहां पर थे ना? फिर द्वापर में आए तो तुम्हारी मूर्तियां बन गए, तुम्हारी पूजा हो रही, देखो मंदिरों में, तुम नीचे के वाम मार्ग में गए कि तुम्हारे मंदिरों में तुम्हारी पूजा हो शुरू हो गई, और तुम जो है फिर बाद में जब ये कलयुग पूरा होने को था तो मैं आ गया, मैंने तुम्हें मनुष्य से ब्राह्मण बना के अपनी गोद में बिठा लिया, अब गोद में बिठा के तुम्हें राजयोग सिखा रहा हूं, संगम की ब्राह्मण स्वरूप है ना, ब्राह्मण मना बेहद, जिसकी बुद्धि और मन बेहद में हो, और फिर तुम्हें मैं अभी राजयोग सिखा के पावन सत्व प्रधान फरिश्ता बना रहा हूं, फरिश्ता स्वरूप, फरिश्ता माना जिसका स्पर्श देह और देह की दुनिया से रिश्ता नहीं, तुम्हें ऐसा बना रहा हूं, चमकीला बना रहा हूं, तुम्हारी बुद्धि को और ज्ञान और मन को क्या बना दिया, चमकीला बना दिया, चमक रही है, परसों बाबा ने बात की ना, चमकीला बना दिया है ना। और फिर वापस तुमको मैं क्या ले जाऊंगा, वापस घर ले जाऊंगा, फिर वापस वहां से सत्युग, ये हो गया ना स्वदर्शन चक्र, हो गया नहीं हो गया, ये त्रिकालदर्शी भी हुआ, स्वदर्शन भी हो गया है ना। तो बाबा ये टीचर के रूप में स्वदर्शन चक्रधारी बना दिया। अब सतगुरु के रूप में क्या किया बाबा ने, त्रिलोकीनाथ बना दिया है ना, तीन माते ना, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ। बाबा ने मुझे क्या दिया, जैसे सतगुरु कर्म में मुझे डायरेक्शन दे दी, बच्चे ये तुम्हारा साकार लोक है, ये पीछे बीच में मेरा आकारी लोक है जहां फरिश्ता लोक है, जो मेरा कुछ और नहीं, मेरा दिल है, इस दिल में तुम आ जाओ। मेरे दिल में कौन आ सकता है, जो मेरा आज्ञाकारी होगा, सपूत होगा, आगे आकर सपूत माना जिसकी बुद्धि मन बुद्धि और मन पवित्र होगा है ना, जो पवित्रता को धारण करेगा मन बुद्धि वचन कर्म से है ना, और मेरी श्रीमत पे चलेगा, पढ़ाई पढ़ेगा तो उसकी बुद्धि मन पवित्र हो गई, वो मेरे पास आ सकता है, मेरे दिल में आके, दिल तक नशीन बने, मेरे दिल में आके रहे, है ना, दिल तक पे बैठा रहे। मेरा दिल कितना बड़ा है, मेरे दिल में, मेरा दिल तक इतना बड़ा है, इसी पे सो जाओ, इसी पे खाना खा लो, इसी पे सैर कर लो, इतना बड़ा मेरा दिल है ना, सब कुछ यहां कर सकते हो ना। तो बाबा कहते मेरे दिल में आ जाओ। तो ये बाबा ने मुझे शायद आज बता दिया ना, त्रिलोकीनाथ ना, तो मेरे को क्या ये मल्टीपल एंट्री वीजा दे दिया, जब चाहे मैं कहां जाऊं, सुखशब्दन में पहुंच जाऊं, जब चाहे परमधाम पहुंच जाऊं, जब चाहे सुखधाम पहुंच जाऊं, नहीं कोई रोक टोक है क्या? तो सतगुरु के रूप में बाबा ने क्या किया, मेरे पापक्रम खत्म नहीं हुए अभी, तो भी बाबा ने मुझे वीजा दे दिया। वैसे मैं जा नहीं सकता, जा सकता हूं क्या? पापक्रम साथ है, बोझा साथ है, तो मैं कैसे ऊपर जाऊं? किंतु बाबा ने मुझे वीजा दे दिया, बच्चे तुम आओ, अनुभव करो, मेरे पास आ जाओ, सूक्ष्म वतन में आ जाओ, परमधाम में आ जाओ, है ना, चलो सुखधाम, थोड़ी देर चलो सुखधाम में आ जाओ, वो तो मरने के बाद ही आओगे, शरीर छोड़ने के बाद, किंतु अभी भी आ जाओ, देख के जाओ अपना महल कैसा है तुम्हारा महल, है ना। तो बाबा ने दिया ना वीजा, दिया नहीं दिया? आप सबको वीजा मिला नहीं मिला? जिनको वीजा मिल गया हाथ उठाओ, सबको मिला? जाते हो वीजा यार जेब में रखा रहता है, यूज करते हो वीजा का? नहीं करते हो? यूज नहीं करते हो, एक्सपायर हो जाएगा। और बंधु के रूप में क्या दिया, बंधु के रूप में बाबा ने क्या दिया, मैं बता रहा हूं, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछो? गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। तो हम में ये गोपी वल्लभ की गोप गोपियां हैं ना, इनसे पूछने का ये तरीका है, इकट्ठा करने का तरीका ये है, एक एक संबंध के अनुभव करो। और क्या करो, क्या करो, खुशी का खजाना इकट्ठा होता होगा नहीं होगा? मां के रूप में इकट्ठा किया, एक मिनट में बाबा की गोद में पहुंच गए, फिर मां बाप के रूप में ज्ञान कत्व से नेत्र मिल गया, समझ आ गई सारी बात, कर्मों की गुहे गति भी बाबा समझा देता है, बाबा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी हार्ट की आर्टरी क्यों ब्लॉक हो गई, बाबा मेरे पेट में गैस क्यों बन रही, मेरा पेट खराब क्यों होता है, मेरे को सांस की बीमारी क्यों है, बाबा मेरी कमर क्यों दुखती है, तो बाबा समझा देगा। सुना, कर्मों की गुहे गति बाबा समझा देगा। ज्ञान में ना समझ, समझ का नेत्र बाबा ने दे दिया। पहले मैं सोचता था मेरे को कमर में दर्द हो रही, डॉक्टर ठीक कर देगा, ऐसे ठीक हो जाएगा, ऐसा ठीक हो जाएगा, ना ऐसे ठीक नहीं होगा, विकर्मों का कारण हुआ। हार्ट की बीमारी क्यों हुई, किसी के हार्ट को दुख पहुंचाया ना, तभी तो हार्ट की बीमारी हुई। पेट में दर्द क्यों होता है, एसिड क्यों बनता है, थोड़ी थोड़ी बात फील करते हो, खुशी गायब हो जाती, हाजमा होता नहीं, वही खाना रखा रहता है। सांस ठीक क्यों नहीं आता, दमे की बीमारी क्यों, हर समय चिंता लगी रहती है, शांति जीवन में नहीं है। कमर दर्द क्यों होती है, राई को पहाड़ बनाने की, राई का पहाड़ बनाने की आदत पड़ी हुई है, छोटी छोटी बात को बड़ा बना लेते हैं। तो समझ आई ना, बाबा ने हमें समझ का नेत्र दिया ना, तो ये बाबा ने समझ दी ना। फिर टीचर बंधु के रूप में क्या दिया, बंधु माना बड़ा भाई, अब बड़ा भाई ये होता है छोटा, छोटा सा बच्चा है एक साल का, तो बच्चा, बच्चे ने चीज उठा रखी, भाई क्या करता है, क्या बड़ा भाई क्या करता है, चल तू आराम से चल, मेरे को दे दे, अब थैला मेरे को दे दे, नहीं तू मत बोझ उठा। बाबा क्या करता है, भाई के रूप में क्या कहता है, बच्चे तुम्हारे जो भी लौकिक अलौकिक बोझ हैं मुझे दे दो, आप हल्के हो जाओ। तो बाबा हमको ही कहता है, बच्चे तेरे जो भी जिम्मेवारी लौकिक जिम्मेवारी है, बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, माँ बाप है, सास ससुर है, तुम्हारी जिम्मेवारियां हैं, घर में जिम्मेवारियां हैं, पढ़ाई नौकरी करते हो तुम, उसकी जिम्मेवारी है ना, तुम्हारे सेंटर संभालते हो, तुम सेंटर में रहते हो, तुम्हारे सेंटर में टीचर हो या तुम्हारी छोटी बड़ी बहनें हैं, है ना, तुम्हारे पास हैं, तो जो भी तुम्हारी जिम्मेवारियां हैं मुझे दे दो, फिर मैं जैसे मैं बताऊं वैसे तुम कर लो। तो लौकिक अलौकिक जिम्मेवारी सब बाबा को बोझ देके हल्के हो जाओ। सखा के रूप में जाने अनजाने हमसे कोई गलती हो जाती है, होती नहीं होती, हम गलती चाहते नहीं हमसे गलती हो, किसी भी गलतियां हो जाती हैं, हो जाती नहीं हो जाती हैं, और उसका हमें दिल खाती रहती है, और हम वो बात किसको कह भी नहीं सकते, किसको सुना भी नहीं सकते, तो बाबा को दोस्त के रूप में बता दो, बाबा ये मुझसे गलती हो गई, दोस्त को सारी बात बता सकते हैं ना, तो बाबा को बता दो, लिख के दे दो, बाबा माफ कर देता है, आधा तो माफ हो जाता है ना। साजन के रूप में क्या करता है बाबा, हमें दैविक गुणों से सजा देता है। साजन क्या करता है सजने के लिए, गहने लेके आता है, कपड़े लेके आता है ना। तो बाबा क्या करता है, हमको गहने कपड़े नहीं लाके देता है, क्या करता है आत्मा को सजाता है। किससे? दैविक गुणों से, सत्यता से, निर्भयता से, अंतर्मुखता से, एकांतवासी, एक के अंत में खोए रहना, एकाग्रता से, है ना, सरलता, नम्रता, उदारता, मधुरता, धीर्यता, पेशेंस, है ना, गंभीरता, रमणीकता, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता, सहनशीलता, दृढ़ता, आज्ञाकारी बनना, वफादार, ईमानदार, फरमान बरदार बनना, सदा सम्मान में रहना, सबको सम्मान देना, निमित भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी, ऐसे बहुत सारे दैवी गुण है ना? बाबा हमें सजाता रहता है। जैसे कि कान के कुंडल पहना दिए, गले में माला पहना दी, यहाँ पे माथे पे एक टीका लगा दिया, है ना, अरे कहते ना रहते ना खरीद के, हाथों में कंगन पहना दिए, तो ऐसे बाबा हमें दैवी गुणों से सजाता आत्मा को। तो बाबा ऐसे सजन के रूप में क्या करता है, जो हमारे कीड़े लगे हुए हैं, हमारे अंदर कौन से कीड़े लगे हुए हैं, चार कीड़े लगे हुए हैं, एक तो देहभान का कीड़ा लगा हुआ है, और देह के संबंधी हमारी बुद्धि में बड़े गहरे चिपके हुए हैं, है ना, एक तो देह अपनी चिपकी हुई है और देह के संबंधी भी अंदर बैठे हुए हैं बहुत, और देह के पदार्थ भी बैठे हुए हैं, है ना, और देह के ये पांच विकार है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये भी स्थूल रूप में, सूक्ष्म रूप में अंदर बैठे हैं, और देह की आदतें बैठी हैं अंदर ये जहां कीड़े के रूप में बैठे हुए आत्मा के अंदर, बार बार अंदर काटते रहते हैं। और बाबा क्या करता है, ऑपरेशन करके इनको निकालता रहता है। देह का बहन हम अपने प्रैक्टिस करते ना, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं, निकल गया, एक बार थोड़ी देर अनुभव किया, निकल गया, फिर वापस कीड़ा आ जाता है, फिर बाबा को याद करते, फिर बाबा निकाल देता है ना, फिर हम कोई चीज देख के फिर देहबान में आ जाते हैं, फिर कीड़ा अंदर घुस जाता है ना, फिर देह का संबंध, बच्चा बार बार याद, बच्चा याद आता है, कीड़ा अंदर घुस गया है ना, फिर बाबा ऑपरेशन करने, नहीं वो बच्चा उसका अपना अलग पार्ट है, निकालता है, फिर उसको अंदर घुसा लेते हैं थोड़ी देर में, बाबा निकालता है हम डाल देते हैं, बाबा निकालता है हम डाल देते हैं, बाबा निकालता है हम डाल देते हैं, बाबा अंदर से काम विकार की फीलिंग निकालता है, क्रोध का निकालता है, लोभ का, मोह, अहंकार निकालता है, फिर हम डाल देते हैं, है ना, तो बाबा सर्जन है ना, तो इनको ऑपरेशन करके बाबा निकालता रहता है, और बच्चे के रूप में अपना सब कुछ बाबा को, तन, मन, धन, मन, वचन, कर्म बाबा को समर्पित कर देते हैं। तो ऐसे एक एक संबंध की अनुभूति का गहरा अनुभव होना चाहिए, आधा आधा घंटा एक ही अनुभूति में खोए रहो, यही योग है, यही सत्य है ना, ये माँ बाप हमारे सत्य नहीं है, भाई बहन सत्य नहीं है, थोड़ी देर में बदल जाएंगे, पर वो कभी नहीं बदलेगा। और फिर ड्रामा, शिष्य रूपी ड्रामा, इस शिष्य रूपी ड्रामा में हर आत्मा एक्टर है, हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है, और शिव बाबा इसका डायरेक्टर है, और हर आत्मा डायरेक्टर क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी, सुप्रीम जस्टिस भी है, और हर आत्मा को उसके इस जन्म और उसके पिछले जन्मों के हिसाब, कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहे हैं। इसलिए अब तक जो कुछ भी हुआ है अच्छा हुआ है, हम क्या कहते हैं, मेरे साथ जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, इतने सारे साल बीत गए हमारे जीवन में, हमें 20 साल हो गए शादी किए, 30 साल हो गए या 40 साल शादी नहीं भी, अकेले ही रहते हैं, कुमार हैं, कुमारी हैं, अकेले रहते हैं 20-30 साल में, जो कुछ भी घटनाएं खराब हुई हैं हमें वही याद रहती हैं, पॉजिटिव बात कभी याद आती है? जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, एक दूध, एक भगोना है दूध का ना, उसमें 2 लीटर दूध है, उसमें एक मक्खी गिर जाए तो क्या दिखाई देता है आपको, दूध दिखाई देता है, मक्खी दिखाई देती है, क्या दिखाई देता है, दूध के मक्खी। ऐसे संबंधों में क्या होता है, वो हमें कितना ही हमारे माँ बाप ने हमारी पालना की हो, कितना ही हमें ध्यान किया हो, कितना ही पैसे खर्च किए हो, कितना ही हमें स्कूल में पढ़ाया, खाना खिलाया, सब कुछ खिलाया, कि तुम बाप ने मेरे को एक दिन गलत बोला था, डांट लगाई थी, तो बाप की शक्ल देखते क्या याद आता है, वो पालना याद आती है कि वो उसने मेरे को उस दिन डांटा था, वो याद आता है, 20 साल पहले डांटा था तो वही डांट वाली याद आती है, मक्खी दिखाई देती है, बाप दिखाई नहीं देता है, माने ऐसे पति पत्नी के बीच में ये ऐसे दिखाई देता है, तो संबंधों में क्या दिखाई देता है, यही दिखाई देता है, तो दुख हमें याद रहते हैं, नेगेटिव बात ही याद रहती है, तो ये हमें ध्यान रखना कि जो हुआ अच्छा हुआ है ना, इससे बीमारियां आती हैं हमारे अंदर। अगर हम अपने आत्मा समझ के परमात्मा को याद करें, शिव बाबा को याद करें, तो हमारे अंदर ऐसी बीमारी नहीं आए, ठीक है, तो ये हमें समझना है ना? कर्मों का हिसाब किताब, कर्मों का हिसाब किताब क्या है? मैंने ऐसे एग्जांपल एक दिन दिया था कि मैंने 100 साल पहले किसी 10 रुपए उधार लिया और 10 रुपए वापिस नहीं किया, इस जन्म में वापिस मेरे पास मेरा दोस्त बन के आ गया, मेरा बेटा बन के आया, बेटी बन के या पति बन के पत्नी बन के आ गया, तो 10 रुपए का ब्याज कितना हो गया 100 साल के बाद? कितना ब्याज हो गया लगा के देखना आप, 5 करोड़ रुपया ब्याज हो जाता है। क्योंकि आप कैसे 5 करोड़ ब्याज हुआ? 1916 से लेकर 1936 तक 3 साल में पैसा दुगना होता था, 40 से 66 तक 4 साल में पैसा दुगना होता था, 66 से 86 तक 5 साल में दुगना होता था, और 86 से लेकर अभी तक 7-8 साल में दुगना होता है। आप खुद ही लगा के देखना, 5 करोड़ 4 लाख रुपया हिसाब होता है ना, 10 रुपए का ब्याज। सोचो, ये कर्मों का हिसाब किताब है। तो आपने जो कर्म किए हैं, हमने जो कर्म किए हैं, एक गाली दी किसी को 100 साल पहले, तो कितनी गाली मिलेगी वापस? किसी की एक बार इंसल्ट की, कितनी इंसल्ट मिलेगी इस जन्म में? कर्म, ये कर्मों का हिसाब किताब है। तो कोई हमारी इंसल्ट कर रहा है, कोई हमें धोखा दे रहा है, किसी ने हमें दुख दे रहा है, दुख दिया, क्यों दिया? उसने गलत नहीं किया, हमारे कर्मों का हिसाब किताब है। हमें दुख क्यों होता है? हमें दुख इस बात का होता है, इसने मुझे दुख दिया, इसने मुझे इंसल्ट की। दोषी वो नहीं है, मेरे ही कर्म दोषी हैं, मैं ही जिम्मेवार हूं। तो इस बात को बार बार गहराई समझने की आवश्यकता है, जो हुआ अच्छा हुआ, कोई दोषी नहीं है। और मैं एक बात आपसे कहता हूं, मैं अपने आप को जानता हूं या आप अपने आप को जानते हैं, कोई आपकी महिमा करे तो आप बड़े हो जाएंगे क्या? कोई आपकी बहुत बड़ाई कर रहा है तो उससे आप बड़े हो जाएंगे? और कोई आपकी इंसल्ट कर रहा है, गलानी कर रहा है, तो आप छोटे हो जाएंगे? नहीं, महिमा करने से कोई बड़ा नहीं होता और बुराई करने से कोई बुरा नहीं होता है। आप जो हो जैसे हो अपने आप को जानते हो, ठीक है? तो इसकी बहुत गहराई में जाओ, तो जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला सबसे अच्छा होने वाला, कल क्या होने वाला है? बहुत अच्छा, उससे अगले दिन बहुत अच्छा, और भविष्य में क्या होने वाला? तो बहुत अच्छा होने वाला है। तो जितना इस ABCD को आप मनन चिंतन करते जाओगे, उतना आपकी मन और बुद्धि पवित्र होते जाएंगे। पवित्र हो देंगे तो फिर शांति आए, शांति माना ना पास्ट का चिंता ना भविष्य की चिंता, वर्तमान में मैं आत्मा परमात्मा से कंबाइंड रहूं और कंबाइंड रहकर हर संकल्प बोल और कर्म करूं, संबंध संपर्क में आऊं, इसको बोलते हैं शांति। रूहानी प्रेम किसे कहते हैं? फिर इस शांति से प्रेम पैदा होता है, रूहानी प्रेम। रूहानी प्रेम किसे कहते हैं? रूहानी प्रेम माना विश्व में जितने भी मनुष्य हैं उन सबको उनके पार्ट के साथ, उन जो पार्ट लेकर रोल प्ले कर रहे हैं उसके साथ आदर से स्वीकार करना, और फिर ईश्वरीय मर्यादाओं में रहकर उसकी पालना करना। किसी व्यक्ति ने मेरी इंसल्ट की, धोखा दिया, तंग किया, मेरे से गलत बोल बोले, गलत व्यवहार किया, तो भी मुझे क्या करना है? उसको आदर के साथ, उसके रोल के साथ मुझे स्वीकार करना, जैसे परमात्मा हमें स्वीकार करता। हमने कुछ भी किया, बाबा को कुछ मर्जी बोला, पत्थर में डाला, ठिकर में डाला, हमने इसमें डाला, उसमें डाला, बाबा ने क्या किया? आके मीठे बच्चे किया, लाडले बच्चे कहा, नहीं, बाबा ने ये नहीं बोला तुमने मेरे को ऐसे ऐसे बोला, नहीं, बाबा ने हमें स्वीकार किया। ऐसे ही जैसे बाबा हमको आदर से स्वीकार करता है, ऐसे हम सबको स्वीकार करें, और फिर ईश्वरीय मर्यादाओं के अंदर रहकर उसकी पालना करें। किसी के लगाव झुकाव में आके पालना ना करें, टकराव में आके ना व्यवहार करें, इसने मेरे को ऐसा किया, इससे मैं बात नहीं करूं, इसको मैं छोड़ दूं, इसको मैं साइड में कर दूं, इसके मेरे सामने नहीं आए ना। जब तक हम इससे पार नहीं होंगे ना, तब तक हम बाबा का प्यार महसूस नहीं कर सकते, तब तक हम बाबा की छत्र छाया में नहीं आ सकते। बाबा की छत्र छाया को जब भी हम महसूस कर सकते हैं, जब सारा विश्व को हम स्वीकार कर लें, हर आत्मा को उसके पाठ के साथ स्वीकार कर लें, तो हम परमात्मा के प्यार को महसूस कर सकते हैं। और इसको बोलते हैं अतिंद्रिय सुख। मतलब जब मैंने सबको स्वीकार, सारे विश्व में एक व्यक्ति मेरा दुश्मन नहीं, सबसे मेरी दोस्ती है, सब मेरे भाई हैं, जब इस बात को मैंने स्वीकार कर लिया रेस्पेक्ट के साथ, तो अब मैं बाबा का प्यार महसूस कर सकता हूं, बाबा के नजदीक पहुंच जाता हूं, तब मुझे महसूस होता है मैं अविनाशी आत्मा, अविनाशी बाप की संतान हूं। एक एक संबंध की अनुभूति बाबा से होती है। अगर मैं स्वीकार नहीं करता हूं तो क्या होता है, मुझे वो ही संबंध नीचे खींचता है जिसको मैं स्वीकार नहीं किया। मैं ऊपर जाना चाहता हूं, मुझे नीचे खींचता है या खींचती है ना? तो ये हमको जरूर ध्यान रखना कि हमें जब सबको हम स्वीकार करेंगे दिल से, अनकंडीशनल डिग्निफाइड रेस्पेक्टफुल एक्सेप्टेंस एंड केयर फॉर ईच एंड एवरी वन इन द यूनिवर्स, तब हम परमात्मा की छत्र छाया महसूस करते हैं और तब हमारी सब इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। जब ऐसी स्थिति आती है तो हम परमात्मा के नजदीक पहुंच जाते हैं। और यह स्थिति है अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति। मतलब हम ऐसा महसूस करते हैं बाबा मेरे सामने है, कह रहा बच्चे आओ आओ, बच्चे मेरी गोद में समा जाओ। हर समय चलते फिरते अनुभव होता है बाबा मेरे साथ है, हर संबंध से मेरे साथ है। जब ऐसा अनुभव होता है तो ये अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति है। और ये जितना अनुभव करते जाओ, अमृत वेले चलते फिरते बीच में एक मिनट निकाल के, दो मिनट निकाल के, जितना अनुभूति हम करते जाएं, जितनी अनुभूति करते जाएं, फिर बाबा की गोद में खो जाओ, बाबा की याद में लवलीन हो जाओ, देह का भान देके दुनिया का भान खत्म हो जाए, उसे आनंद कहते हैं। तो ये अतीन्द्रिय सुख आनंद की जितनी अनुभूति जमा करते जाओ, ये खुशी का खजाना बढ़ता जा रहा है। तो ये जब हम ऐसा करेंगे, कोई हमसे कुछ, अब मैं ऐसी स्थिति में बैठा हूं, बाबा की याद में खोया हूं, बाबा की याद में चल रहा हूं, बाबा की याद में काम कर रहा हूं, हॉस्पिटल में या घर में कहीं भी हूं, किसी ने मुझे इंसल्ट भी कर दी, मुझे फील ही नहीं हुई, मैं मुस्कुरा रहा हूं, तो ये खुशी की खुराक मैंने उसको भी खिला दी। मैं बाबा की याद में हूं, जैसे इंसल्ट कर रहा है वो गला नहीं कर रहा है, मैं सोच रहा हूं मेरे पर फूल चढ़ा रहा है। तो ये खुशी की खुराक है। हाँ, एक और मैं यहां खुशी खुराक है, ये मुरली खुशी खुराक है, मुरली के नए नए पॉइंट्स खुशी खुराक है। रोज मुरलियां 10-10 बार, 15-15 बार, बार बार रिवाइज करना, मुरली के पॉइंट्स रिवाइज करना, जेब में ही रखना, बाबा का लव लेटर जैसे होता है ना, लव लेटर जेब में रखते हैं दिल के पास, जब मौका मिला निकाला, एक लाइन पढ़ी, बाबा की मुरली पढ़ी, मुस्कुराया, अंदर से मनन चिंतन मंथन किया, बार बार, ये मुरली खुशी खुराक, इसी को बार बार, एक एक पॉइंट को बार बार गहराई से जाना, रिवाइज करो, रियलाइज करो, अनुभव करो, बाबा ने क्यों कहा, मेरे जीवन में कैसे इसको लेके आऊं, तो ये खुशी खुराक है। फिर एक चीज और, भोजन है ना, भोजन हमारा कैसा, बाबा की याद में बनाओ, बाबा की याद में खाओ, तो वो खुशी खुराक का काम करेगा। अगर मैं रास्तिक भोजन कर लूं, पराठा पकौड़ा समोसा खा लूं, तो उससे आलस आएगा, योग लगेगा नहीं, मैं ऊपर जाना चाहूंगा वो नीचे खींचेगा। तामसिक भोजन, चाय कॉफी है बहुत सारी, बहुत चाय कॉफी पी लेते हैं, पराठा, ये अचार खा लेते हैं, तली चीजें खा लेते हैं, बासी चीजें खा लेते हैं, है ना, तो ये चीजें क्या करती हैं, उत्तेजना पैदा करती हैं। कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, है ना, आइसक्रीम खा लेते हैं बहुत सारी, तो क्या होती है, उत्तेजना पैदा करती है। उत्तेजना माना फिर चिंता आएगी, चिड़चिड़ापन, पेट में एसिड बनेगा, तो सहन शक्ति अंदर रहेगी नहीं, बेचैनी लगेगी, है ना, तो मैं चाहूं, मुझे बात बात में गुस्सा आएगा अपने आप, तो ये ना खाओ। तो इस तरह से अपने आप को जब करेंगे खुशी खजाना, एक एक संबंध की अनुभूति बढ़ाओ, ड्रामा का जो भी बात हो उसमें जो मन में यही फील करो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा, और जो होने वाला सबसे अच्छा, बाबा मेरे साथ है, एक संबंध में अनुभव करेंगे तो खुशी का खजाना जमा होता जाएगा। कभी रिएक्शन मत करो, खजाना जमा होता जाएगा, अनुभव बढ़ता जाएगा। कितनी समस्याएं, बाबा के साथ साथ का अनुभव करो तो खुशी खजाना बढ़ता जाएगा और एक खुशी खुराक मेरे अंदर बढ़ती जाएगी। फिर समस्याएं और भी आएंगी, बड़ी बड़ी आएंगी, जितना हम आगे बढ़ेंगे और समस्याएं आएंगी, ये तो मुझे अनुभव होगा तो मेरे लिए सब क्या होगा, बहुत सहज होगा, राइट। और जितना आप अभ्यास करते जाओगे ये वाला, उतना आपका आभा मंडल बड़ा होता जाए। आभा मंडल में ना ये सात एनर्जी, पहले तो मेरे पास जैसे ना आत्मा में अभी बहुत थोड़ी सी थी, जैसे मैंने अनुभव किया, सूक्ष्मता में ज्यादा रहे, सूक्ष्मता में रहना माना अपना बुद्धि और मन को पवित्र रखोगे तो यहां रहते भी हम बाबा की गोद में रहेंगे, सूक्ष्म वतन का अनुभव करते रहेंगे, सूक्ष्म वतन का अनुभव करते रहेंगे माना हम बाबा की गोद में रहेंगे। ये अनुभूति हमको ऑटोमेटिक होती रहेगी और फिर हमारी ऑटोमेटिक, हमारा एक खजाना, मतलब हमें यही लगेगा जब भी हमारे अंदर कोई सामने पूरी प्रॉब्लम आएगी, हम ऐसा फील करेंगे हम बाबा की गोद में पहुंच गए, हम बाबा की गोद, एक सेकंड में बाबा की गोद में पहुंचेंगे। तो इसका अनुभव करते जाओ, है ना, जैसे बाबा कहते हैं, जैसे बच्चा क्या करता है, कोई मुसीबत आती क्या होता है, बच्चा क्या करेगा, दौड़ के मां की गोद में घुस जाता है। हमारी मां कौन है, ब्रह्मा बाबा, है ना। जैसी कोई मुसीबत आई, नीचे प्रॉब्लम हो रही है, गलानी कर रहा है कोई, प्रॉब्लम इंसल्ट कर रहा है कोई, सामने समस्या आ गई, एक सेकंड में पहुंच जाओ बाबा की गोद में, बैठ के छुप जाओ, जब प्रॉब्लम खत्म हो जाए वापस नीचे आ जाओ, नहीं छोटा बच्चा यही तो करता है ना, बाघ के माँ की गोद, हम बच्चे हैं ना, तो माँ की गोद में घुस गए। माँ की गोद कहाँ पे है? सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म माना पवित्र, बुद्धि मन को पवित्र किया, पहुंच गए बाबा की गोद में। बाबा से कुछ, बाबा बाबा इधर इधर बाबा प्यार कर रहा है, बाबा पूछ रहा है, बच्चे बच्चे जब तक मेरे पास ही रहो प्रॉब्लम खत्म होगी, दर्द भी हो रहा है ना, बाबा की गोद में पहुंच गए, अपने आप ही बाबा ठीक कर देगा। तो ये जितना हम अनुभव बढ़ाते जाएंगे, ये खुशी खजाना जमा होता जाएगा। और ये खुशी खुराक हम भी, हम जैसे मेरे से, मेरे को लग रहा है मेरे को प्रॉब्लम है, लोग कहेंगे इसको इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो भी मुस्कुरा रहा है, तो खुशी खुराक हुई ना, तो उनके अंदर भी हिम्मत आ जाएगी ऐसा करने की, राइट। तो ये खुशी का खजाना जितना हम करेंगे, और इसका साधन है मुरली, बाबा की मुरली। ये मुरली मेरे जिगर से लगा के रखो, अपने दिल से लगा के रखो, इसको दिन में 10 बार 20 बार 50 बार पढ़ो, एक एक लाइन पढ़ो। मैं लास्ट में ये बात सुना के आपको खत्म करता हूँ, दादी के साथ का अनुभव एक मैं बताता हूँ। बड़ी दादी के साथ सुबह सुबह मैं रोज दादी के पास जाता था पहले ना, जब बड़ी दादी थी, तो एक दिन दादी ने मुझे कहा, दादी गुप्ता जी पता है आपको अष्टरत्न कौन बनेंगे? तो मैंने कहा, दादी मुझे तो नहीं पता, आप बताओ। तो दादी कहती है, देखो एक दिन में कितने सांस लेते हैं हम? मैंने कहा, दादी एक मिनट में 14 सांस लेते हैं, रात में 10-12 सांस लेते हैं। कहती है, आप कभी जोड़ के देखना, हम 16,000 सांस लेते हैं एक दिन में, 16,000 सांस लेते हैं, 16,000। तो दादी कहती, जो बच्चा श्वासों श्वास बाबा और बाबा की मुरली की मुरली को याद करता है, वो अष्टरत्न में बनता है। जो बाबा, दादियां हमारी कैसी हैं, जानकी दादी को देखो, बड़ी दादी को देखो ना, और दादी गुलजार दादी को देखो, दादी रत्नमणि को देखो, है ना, कैसे है? जब देखो मुंह से बाबा बाबा निकलता रहता है, अंदर भी बाबा, बाहर भी बाबा, बाबा ही बाबा, मुरली मुरली, इसलिए अष्टरत्न बनती है। और फिर मैंने कहा, दादी कहते विजयमाला के दाने कौन बनेंगे? मैंने कहा दादी आप बताओ, मुझे तो नहीं पता। तो दादी कहती है, अष्टरत्न वो बने 108 की वाला में वो आएंगे जो कम से कम 100 बार मुरली बाबा और बाबा की मुरली को याद करते हैं। मैंने कहा, दादी कैसे? 16 घंटे होते हैं ना, 16 घंटा मतलब 6 बार, एक घंटे में 6 बार, हर 10 मिनट में जिनको बाबा की याद ऑटोमेटिक आए ना, और बाबा की मुरली, तो वो 108 की माला में आते। तो आप आएंगे 108 की माला में, एक घंटे में 6 बार, सारी मुरली नहीं, मुरली के एक लाइन खोल के पढ़ लो, बुद्धि में रिवाइज कर लो, है ना, ये बाबा ने कहा आज, बाबा ने ये कहा, मुझे ऐसा बनना है, यही बाबा की याद है। और जो 16,000 की माला में कौन आएंगे, 16,000 की बाबा, मैंने कहा, दादी कहती है जो दिन में आठ पैर होते हैं, जो कम दिन में कम से कम 8 बार मुरली के पॉइंट रिवाइज करता है ना, वो 16,000 की राजा रानी बनेंगे। और 9 लाख में कौन आएंगे, जो कम से कम रोज अमृत वेले मतलब क्लास में आके एक बार मुरली सुनता है बाबा के, सारे काम छोड़ के, वो 9 लाख में आएगा। और जो मुरली में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लेट होता है, 2 घंटा लेट माना 2 जन्म लेट आएगा, 1 घंटा लेट आता है मुरली क्लास में तो 1 जन्म लेट, 4 घंटा 11 बजे आता है तो माना 4 जन्म लेट, ठीक है। तो ये बाबा की मुरली ही क्या है, खुशी की खुराक है। जितना इसको पढ़ो, जितना इस पे मनन माना रिवाइज करो, चिंतन माना गहराई में जाओ, मंथन माना और इसको अंदर गहरे जाके मंथन करो, मैं अपने जीवन में कैसे लाऊं, और सिमरन माना इसको सिमरो बार बार, मतलब कार्य में लगाओ ताकि अंदर रिकॉर्ड हो जाए, ये मुरली खुशी खुराक है। ओम शांति। अभी 2 मिनट बाबा को याद करेंगे, फिर उसके बाद
पुराना ना था अपना, फिर भी लगता नया नया। बहुत पुराना ना था अपना, फिर भी लगता नया नया। ऐ रूहानी जादूगर तो हमें बता दे किया है क्या। ऐ रूहानी जादूगर तो हमें बता दे किया है क्या। हुई मेरी खुशहाल जिंदगी प्रभु पनाहों में,
हमारी राहों में।
गहने गुणों के हम पहने, हीरा हमें बनाया है। गहने गुणों के हम पहने, हीरा हमें बनाया है। पवित्रता के मोती भर के मस्तक को चमका,
हमारी।